आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।
गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू दिस प्रोग्राम ऑन द स्पेशल 3-day सेशन ऑफ पार्लियामेंट विच स्टार्टेड टुडे। द 3 अमेंडमेंट बिल्स रिक्वायर्ड फॉर स्पीडिंग अप ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, प्रपोजिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर प्रेजेंटेड इन लोकसभा टुडे। कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026, Delimitation Bill 2026 were presented by Union Law Minister Arjun Ram Meghwal, and Union Territories Laws Amendment Bill 2026 was presented by Home Minister Amit Shah. After discussion on the bills today and tomorrow in Lok Sabha, voting will be done tomorrow evening to pass the bills, and then the bills will go to Rajya Sabha on Saturday, where after 10-hour discussion, voting will take place. I am your anchor in English, Sonu Sood, and with me is my co-anchor in Hindi, Anand Srivastav.
Shukriya, Sonu. 3 din, 3 pravadhan aur ek aitihasik badlav ki dastak. Bharat ki sansad mein aaj shuru hua vishesh satra, jahan charcha sirf kanunon ki nahi, balki us hissedari ki ho rahi hai, jo lambe samay se adhuri thi. To kya ye 3 pravadhan desh ki rajneet ka chehra badal denge? Kya ye sirf kanun hai ya ek nayi soch ki shuruaat? आज के इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं 3 आयामों को समझेंगे गहराई से और तथ्यों को साथ, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर। आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले अपने श्रोताओं को बता दें कि जो 3 बिल हैं वो संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 है, जिसमें लोकसभा सीटें 850 करने का प्रस्ताव है, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 सीटें हो सकती हैं। दूसरा है परिसीमन संशोधन विधेयक 2026। परिसीमन के लिए जनसंख्या की परिभाषा में बदलाव किया जाएगा ताकि 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026। ये विधेयक पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानूनों में संशोधन करता है ताकि परिसीमन और महिला आरक्षण बिल लागू हो सके। प्रफुल्ल जी, शुरुआत करते हैं जो 131वां संशोधन विधेयक है, जिस पर कि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण मिलेगा और 850 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं। हमारे श्रोताओं के लिए आसानी से आप बताएं आसान शब्दों में कि यह विधेयक है क्या और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है।
देखिए, हमको 2 बातें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। 1996 से लेकर अब तक 6 बार महिला आरक्षण को लेकर विधेयक संसद में प्रस्तुत हुए, और हर बार एक तो वो गिरा दिए गए या एक सदन में पारित होकर भी लैप्स हो गए, और उसके पीछे 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण था कि इसका आधार कौन सी जनगणना या सेंसस होगा, क्योंकि हमको ध्यान में रखना होगा 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर 2000 तक सीटें फ्रीज की गई थी। 2000 में फिर से उस पर अमेंडमेंट आया, क्योंकि उस समय पहली बार यह मुद्दा आया था कि क्या दक्षिण के राज्यों में जहां पे जनसंख्या घटी है, क्योंकि उन्होंने परिवार नियोजन के नियम और कानून को बढ़ावा दिया है, तो उनका प्रतिनिधित्व कम होगा क्या। उसके आधार पर 2001 में फिर से उसमें परिवर्तन किया गया और 1971 की ही जनगणना को बेस बनाकर उसको 2026 तक फ्रीज किया गया। अब ये जो 3 बिल आए हैं, इसमें एक संविधान संशोधन है, 2 ऑर्डिनरी बिल्स हैं। 131वां जो संविधान संशोधन है वो प्रमुख जो 3 आधार थे महिला आरक्षण को विरोध करने के, एक, क्या आरक्षण के भीतर ही आरक्षण की व्यवस्था होगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एससी और एसटी का आरक्षण क्या उसके भीतर ही लागू होगा, तो ये बिल उसके लिए प्रावधान करता है। तो महिलाओं की जो 33% सीटें होगी उसमें से 50% का जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए होगा। दूसरा था क्या पुरुषों की सीटों पर ही महिलाएं लड़ेंगी, तो रोटेशन से 33% सीट्स डिलिमिटेशन के माध्यम से अब निर्धारित की जाएगी। तो क्योंकि वो फ्लैट 50% सीटें अभी सारे ही राज्यों में बढ़ रही है और ऑल ओवर सेंसस से उसका डीलिंकिंग हो रहा है, लेकिन राज्यवार उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आकार और स्वरूप निर्धारित करने के लिए जनसंख्या ये आधार बनेगा 2011 की, तो उस कारण से किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व के प्रपोर्शन में अंतर नहीं आ रहा है। तो ये जो नॉर्थ साउथ वाला तीसरा मुद्दा था वो भी उसके कारण खारिज हो गया।
मेजर ऑब्जेक्शन
दैट इट वाज अ मेजर कंसर्न फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इवन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द स्मॉलर स्टेट्स एंड द सदर्न स्टेट्स। नाउ इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल लॉजिकल चेंज in while increasing the constituencies, all these points are taken care of. So reservation within reservation is provided, additional seats are provided for women, and third, the flat 50% rise in each state's representation will take care. So roughly every parliamentary constituency will have a similar population now. The logic of because your population has decreased from 1971 till date, percentage-wise, right, your representation percentage-wise is not going to go
so
down.
So weightage is going to remain constant.
Yes, constant.
Today, while the Prime Minister was addressing the Parliament, first we'll go across to this explanation which Home Minister Amit Shah gave. He sort of gave very important statistics to make this point which you just outlined. So just listen into what he said.
Ek sabse bada narrative khada kiya ja raha hai, bhranti phailai ja rahi hai ki ye jo teen vidhayak hai, samvidhan sanshodhan vidhayak aur do kanun delimitation ka और संघ क्षेत्र के चुनाव के कानून में बदलाव, वो आने से दक्षिण की क्षमता लोकसभा में बहुत कम हो जाएगी और हमारे दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। माननीय, मैं बिल जो सदन के सामने है, अब सदन की प्रॉपर्टी है, इसका प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन कर कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में 543 के सदन में अभी 28 सीटें और सदन की 543 सीटों की संख्या के 5.15% कर्नाटक के सांसद यहां पर आते हैं। एक बिल पारित होने के बाद, संविधान संशोधन होने के बाद, कर्नाटक की संख्या हो जा गई 28 से बढ़कर 42 और प्रतिशत लोकसभा में 816 में हो जाएगा 5.14। तो जरा भी नुकसान कर्नाटक को नहीं है। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, इनकी अभी 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश की और अब की स्थिति में उसका प्रतिशत प्रतिनिधित्व 4.60 है, 4.60। अब इसमें भी 50% लगभग वृद्धि होगी तो सीटें हो जाएगी 38 और 4.60 की जगह 4.65% उनकी शक्ति हो जाएगी। तेलंगाना में 17 सीटें हैं अभी और उनकी शक्ति 543 के सदन में प्रतिशत 3.13 है। अब उसमें 50% की वृद्धि होगी और सीटें हो जाएगी 26 और 3.13 की जगह 3.18% उनकी क्षमता। मैं तमिलनाडु की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी शक्ति कम नहीं होगी, बढ़ रही है।
So this concern, you were saying that the northeastern states had, the southern states had, that you feel has been completely resolved now?
No, that is addressed with a very innovative approach.
Right.
Where the population of 2011 census will decide the size and the population of each constituency, but the proportion of the state in terms of representation is not going to change.
Yes.
Because while increasing the seats from 543 to 816, the fundamental logic is straight 50% increase for each state. I'll give you an example. Presently, there are 40 Lok Sabha seats for Tamil Nadu. Now, that will be increased to 60. Therefore, इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द सेंसस डेटा इन टर्म्स ऑफ तमिलनाडुस प्रेजेंट डे पॉपुलेशन, बट व्हाइल अप्लाइंग द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट टोटल नंबर ऑफ पीपल इन तमिलनाडु वोटर्स इन तमिलनाडु डिवाइडेड बाय 60 दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला. सो delimitation will be applicable as per the census, but the number of seats will not be linked to the census data. That is the innovative approach this government has taken, and that's why in 2023 also this bill could be passed with near consensus.
Right.
And now in between, government has found answers to all the questions that were raised in last three decades almost to oppose this bill of giving representation to women in the parliament.
प्रफुल्ल जी, ये भी समझना चाहेंगे कि इसमें जो परिसीमन है और उसके बाद जो नया स्वरूप आएगा उसको 15 वर्षों तक प्रभावी रखने की बात की जा रही है, इसके पीछे का क्या अर्थ है?
देखिए, सामान्यतः परिसीमन जैसे 2006 में परिसीमन आयोग बना था और 2009 के चुनाव में उसको लागू किया गया था. अब 2026 में फिर से परिसीमन हो रहा है 2029 के चुनाव में उसको. तो सामान्यतः यदि हम देखते हैं तो अभी तक चार परिसीमन आयोग बने हैं 1952 से चुनाव को यदि हम देखें, तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि 15 से 20 साल का. तो तब तक महिला आरक्षण का जो इम्प्लीमेंटेशन का फॉर्मूला है वो भी स्टेबिलाइज हो जाएगा, जनसंख्या अन्य राज्यों में भी स्टेबिलाइज हो जाएगी. ऐसे में उस समय कुछ आवश्यकता लगती है तो उसके अनुसार, क्योंकि जब परिसीमन होता है तो परिसीमन केवल ज्योग्राफी के आधार पर नहीं होता है. परिसीमन का मूल जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो सोच थी उसमें वो रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या का तो है ही, लेकिन ज्योग्राफी का भी है. ज्योग्राफी के साथ साथ अलग अलग वर्गों का भी है. तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब डिलिमिटेशन होगा तो 15 साल बाद उसका रिव्यू लेना, तो मुझे लगता है कि 15 साल बाद परिसीमन आयोग नया बनेगा लेकिन वो इम्प्लीमेंट होते होते फिर से 20 साल ही होंगे, जो अभी तक की परिपाटी रही है. तो इसमें कोई मुझे लगता है कि बहुत नयापन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस रही है सब जगह पर. और एक बात मैं थोड़ा सा ध्यान कराना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी चीजें हमारे यहां पर आई तो उसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट का इन्फ्लुएंस था
जी.
ब्रिटेन जनसंख्या के संदर्भ में भी और कुल मिलाकर ज्योग्राफिकल यदि हम भौगोलिक आकार देखें तो उसमें भी बहुत छोटा है यूनाइटेड किंगडम, लेकिन वहां पे 650 प्रतिनिधि है. अंतर यह है कि वहां पे असेंबली लेवल पर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पर इतना डायनेमिक हमारा थ्री टीयर जो स्ट्रक्चर है उस तरीके का नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट की सीटें ज्यादा है. लेकिन भारत जैसे विशाल देश में प्रतिनिधित्व का दायरा, एक जमाने में मुझे ध्यान में है जब साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, आउटर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या की दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, तो वो 35 लाख की हुआ करती थी और दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी तो वो मात्र 7 से 8 लाख की हुआ करती थी, चांदनी चौक जैसी. ये इतना अंतर था. अब पिछले परिसीमन ने हमने उसको ठीक कर लिया. अभी इस परिसीमन में लगता है कि ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला ज्योग्राफी और पॉपुलेशन के परसेंटेज में और थोड़ा सा ठीक हो जाएगा. तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के लोकतंत्र का परिपक्वता का भी परिचायक है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स में भी, डिलिमिटेशन की प्रोसेस में भी, हम बहुत सारा डायनामिज्म उसमें जोड़ रहे हैं और समय की आवश्यकता के अनुसार अब महिला आरक्षण भी ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन बाकी सारी चीजों का भी ध्यान रख रहे हैं जिसमें भौगोलिक आधार पर और जनसंख्यात्मक आधार पर एक संतुलन प्रतिनिधित्व का बना रहे.
एब्सोल्युटली. एंड टुडे ड्यूरिंग द डिस्कशन इन लोकसभा, बीजेपी एमपी बांसुरी स्वराज टॉक्ड अबाउट द विमेन्स रिजर्वेशन बिल एंड हाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द हाउस टू राइज अबव पार्टी इंटरेस्ट. लेट्स लिसन इन टू व्हाट शी सेड.
आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही है। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाए तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है, और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। मैं तो धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और इस सदन में उन सभी राजनीतिक दलों का जिन्होंने 27 बरस पुराना विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा।
So when we talk of gender equality, when we talk of political equality, it's not just voting rights. And we have seen that women have been very active. Their voter turnout is very often more than the male voter turnout. So they deserve, you feel, this place in policy formulation, in lawmaking.
No, what Prime Minister today said is very, very significant, where he said, you know, one, he talked about the delay that Ms. Basri Swaraj also talked about. But more important than that, he said, you know, we are not doing some favor by giving
right.
It is their right. And why it is their right? Because, see, we need to understand, India is a unique country where in one stroke, our constitution makers gave voting right everywhere in the world.
Yes.
Including the United States of America, till Sweden, UK. Everywhere women had to fight for their basic right to vote. And that happened not, you know, very long. 1908 to 1972. You know, this was the struggle in many European countries when women got... In India, nothing of that sort happened.
Yes.
Our constitution makers were visionary. And that's why in 1950, when they, you know, gave this constitution to us, they were very, very clear that every adult will get, a right to vote. Now, the idea was eventually, proportionately, every section of the society will get the representation
right.
Also. Unfortunately, that did not happen, which we see in many other fields. You know, if you see the space technology, if you see even our, entire ISRO or DRDO,
yes.
You know, for that matter, even armed forces. Now we see, you know, many women involved in actually running railway engines and metros,
yes.
They're carrying it quite confidently and comfortably. The country that has always believed that this sense of complementarity of a man and a woman, there, you know, the key area where the decisions are made, where the policies are formulated, unfortunately, women didn't get enough space, simply because that decision-making process was somehow, and I remember the comments that were made, which were very, very, not just chauvinist, but derogatory for women, where when first time the bill was rejected in 1996, and then again in during the first NDA government, the comments were made that women with urban employed and with bob cuts and sleeveless, you know, they will be only representing. That was the logic that
but
was given.
In fact, Prafulji, if we see in our municipal corporations, in our panchayats, we have seen this leadership talent of women. They have.
That's
really...
what. That's yes. what. But that's why, they always made this point that, oh, rural women will not get a representation. Oh, women from the backward caste will not get a representation. The ground reality is quite different.
Yes.
Yes. You know, initially people used to make a mockery that you know, it is not actually the woman who is leading the panchayats, but it is the sarpanchapati, you know, who Mukhiya is running
pati.
The show.
Mukhiyapati.
Mukhiyapati, sarpanchapati used to run the panchayats, but now that situation has changed.
Okay.
Now, because of, you know, participation and representation over the period of time, they are taking a call, they are making their own, taking up their own issues, their priorities. And that is one of the reasons why panchayats have taken water and sanitation related issues so significantly and seriously. One of the key reasons why this, schemes related like Jal Jeevan Mission or, Prime Minister gave a call for an issue like Shauchalay, you know, talking from the ramparts of the Red Fort, that was, you know, many people were taken aback. But our panchayats have taken that seriously, and that's why, we see this change. And I'm sure, you know, given the opportunity, that change we will see in our assemblies and the parliament also.
जी बिल्कुल, और इस पर अलग अलग दलों के राजनेताओं ने आज अपने पक्ष रखे हैं, जबकि चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक दूरदर्शिता के साथ इसकी शुरुआत की थी और आज हम इतिहास बनाने की दहलीज पर हैं। अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि हम सबको मिलकर इसका साथ देना चाहिए, चूंकि हम एक इतिहास को बनाने में योगदान दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
देखिए, हकीकत है हम लोग यहाँ कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, हमारी आधी आबादी को उनका हक अधिकार देने की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कैंडिडली पीएम साहब और बोल सकते थे। उन्होंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर आप नहीं करेंगे तो शायद मुझे लाभ हो जाएगा। बट हम लोग किसी लाभ नुकसान की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जो चीज आज से दशकों पहले हो जानी चाहिए थी, उसका अभी तक नहीं होना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं नीयत साफ नहीं है। विपक्ष हर बार किसी न किसी विषय को बहाना बनाकर उसकी आड़ में इस विषय को, नारियों के अधिकार को, वुमेन रिजर्वेशन को सिर्फ और सिर्फ लटकाने का काम कर रहा है। मैंने बार बार कहा है कि अगर आप बड़े लक्ष्यों को देखेंगे तो ऐसे में इन छोटी विषयों को आधार बनाकर उस बड़े लक्ष्य को नहीं पा पाना कहीं ना कहीं ये देश की आधी आबादी के साथ अन्याय है। और इन बातों को बहुत स्पष्ट तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा और बहुत विनम्रता से। जिस संसद में हम लोग बैठे हैं आज, प्रधानमंत्री जी ने, और ये मुझे लगता है जितने भी फर्स्ट टाइमर्स मेंबर पार्लियामेंट है, यंगस्टर्स हैं, उनके सीखने की जरूरत है उनको। यहाँ पे जात पात धर्म मजहब की राजनीति हम लोग नहीं करने आए हैं। हम लोग देश को बांटने की सोच रखने नहीं आए हैं। यहाँ पर जिसने हमें वोट दिया उनका तो संरक्षण करना ही है, बट जिन्होंने नहीं भी दिया है उनके भी संरक्षण, उनके भी हितों की बात हम लोग को यहाँ पर करने की जरूरत है। देश की 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अंदर बैठे तमाम सांसदों के ऊपर है। ऐसे में आप जात पात धर्म मजहब और जिस संविधान का हवाला देकर आप बात करते हैं, वही संविधान बाबा साहब का बना हुआ स्पष्ट तरीके से कहता है कि आप धर्म के आधार पर आप नहीं इसको बांट सकते हैं। और जब आप जातियों की आप बात करते हैं तो क्या उन जातियों के लाभ क्या मुसलमान वर्गों को नहीं मिलता? बट अगर आप उसको फर्दर बायफोकेट करना चाहेंगे और धर्म को आधार बनाना चाहेंगे तो ये सोच गलत है।
जी बिल्कुल प्रफुल जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जो तीसरा कानून है, जो केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 है, थोड़ी उस पर चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे पुद्दुचेरी है, दिल्ली है, इन जगहों में कानून में संशोधन करेगा जिससे परिसीमन और महिला आरक्षण लागू हो सके। श्रोताओं के लिए थोड़ा इस कानून पर आप अपना विचार पेश करें।
देखिए, हमको अंतर समझने की जरूरत है। भारत में राज्य तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है। और यूनियन टेरिटरीज में भी दो तरह के की यूनियन टेरिटरीज है। एक यूनियन टेरिटरी जो है वो सीधे केंद्र शासित है, दूसरी यूनियन टेरिटरी जिनकी अपनी खुद की असेंबली भी है, विधानसभा भी है, जिसमें ये तीन आती है, पुद्दुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो इस वजह से उसमें विशेष अमेंडमेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि ये महिला आरक्षण उस विधानसभाओं में भी लागू होगा, तो इसलिए उसके लिए एक अलग से बिल लाना पड़ रहा है। क्योंकि ये तीन केंद्र शासित प्रदेश जहां पे विधानसभा है, और विधानसभा होने के कारण जो जिसको स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसमें इन राज्यों को विधेयक लाने के विशेष अधिकार है जो बाकी केंद्र शासित प्रदेशों को नहीं है। चंडीगढ़ जैसी टेरिटरी है या दीव दमन जैसी टेरिटरी है, तो उससे ये अलग है और इस वजह से ये अलग बिल लाना पड़ रहा है। अदरवाइज तो ये लार्जर स्कीम का ही हिस्सा है, लेकिन क्योंकि यहां पे विधानसभा है और उन विधानसभाओं में भी ये 33% का आरक्षण विथ 50% रिजर्वेशन फॉर एससी एसटीज ये लागू होना है, इसलिए ये यूनियन टेरिटरीज का अलग से बिल आ रहा है।
सो जस्ट वंस अगेन आई वुड लाइक यू टू यू नो रीइटरेट दैट व्हाट इज द कोर प्रोविजंस ऑफ डीलिमिटेशन बिल 2026 व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टुडे।
सी दिस डीलिमिटेशन बिल इसेंशियली वन gives the flat increase of states in of Lok Sabha seats, the parliamentary seats in each state with 50% rise. It means the freezing of 1971 census is removed. In fact, linking with the census data is removed. Irrespective of what is your population, you are going to get the 50% more seats.
Okay.
Within those 50%, 33%, now the seats are present day seats, you have got actually the 1.5 times of it. Out of those 1.5 times, 33% will be reserved for women.
Okay.
Within those 33% of the women seats, 50% will be reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Now, once this is done, 2011 census will come in picture and Delimitation Commission will draw the constituencies, the geographical boundaries of the constituencies on the basis of 2011 census data, which opposition is trying to object to. The same opposition which was in 2023 was saying that why are you not making 2011 as the basis? The logic, there will be always some logic to oppose the bill. Here the question of intent is more important.
Yes,
I think the government has found this golden mean by giving this, coming up with this formula, which Home Minister Amit Shah explained today, that this 50% rise for each and every state, this psychological barrier, this narrative that was, you know, that just because we have controlled our population, our representation in the parliament is going to, and as they say, in the coming days, you know, demography is going to be the destiny and define the future of democracy. So that fear factor has been addressed. Now those states, whether the smaller states or the bigger states, irrespective of their census population, they are going to get the proportionate representation. But at the same time, 2011 data will be used to redraw the constituencies. So the constituencies and their size will be defined on the basis of 2011, so that freezing of 1971 census data will be removed with this amendment, and this, the number of seats increased will be automatically come in force. So it will not be linked to the census. These are the major provisions that are coming with this 131st Amendment Bill. Delimitation Bill.
प्रफुल्ल जी, आपने विपक्ष की चर्चा की, थोड़े सवाल उनकी तरफ से जो आज उठाए गए संसद में। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन 543 की संख्या पर ही अगर सरकार रहती है, लोकसभा की सीटों की संख्या नहीं बढ़ाती है, तो हम समर्थन करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि जब कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसी दौरान यह विशेष सत्र क्यों बुलाया गया, इसके पीछे क्या राजनीतिक मंशा हो सकती है, तो इस तरह के सवालों पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, मैंने कहा ना कि जब और अपोजिशन का काम भी है किसी भी लोकतंत्र में कि इस पर विरोध करना, प्रश्न खड़े करना, सरकार की नीति पर कुछ ना कुछ टिप्पणी करना, ये
पर तो एक डेमोक्रेसी में ये होता है।
दैट इज बट नेचुरल। द क्वेश्चन इज, यू नो, क्योंकि सरकार ने जो बेसिक अभी तक के इश्यूज थे, जो मैंने कहा ना तीन चार पॉइंट्स कि क्या ये आरक्षण के भीतर आरक्षण होगा, पुरुषों की सीटों का क्या होगा, उत्तर और दक्षिण का भेदभाव मतलब सीटों का रिप्रेजेंटेशन के रूप में क्या होगा, इनको इस तरीके से एड्रेस किया है। और इस वजह से महिला आरक्षण ऑल ओवर सीट्स का बढ़ना, मतलब ये उसी समय तय हो गया था जब नया संसद भवन बना था
जी।
बहुत लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया कि ये 850 के कैपेसिटी का क्यों बना है, तो उसी समय तय हो गया था कि ये सीटें बढ़ने वाली है
जी।
दूसरा इसमें ये 50% का फॉर्मूला लगाकर, इसमें मुझे जो चिंता की बात लग रही है ना वो दूसरी है, जो आज दो बिंदु अलग तरीके से आए
जी।
एक ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर और एक धार्मिक आधार पर रिप्रेजेंटेशन को लेकर, वो पहली बार है। मुझे मेरे लिए वो ज्यादा चिंता के विषय है, क्योंकि संविधान में कहीं पे भी ओबीसी रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान अभी तक नहीं है
जी।
ओबीसी का आरक्षण नौकरियों में है, शिक्षा में है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें एससी और एसटी का रिप्रेजेंटेशन है
जी।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसी संविधान में कहीं पे भी धर्म के आधार पर, क्योंकि बाबा साहब का उस समय का बहुत फेमस भाषण है, सरदार पटेल ने उस पर भाषण दिया है संविधान सभा में, कि हमने धर्म के आधार पर समाज में भेद पैदा करके एक पार्टीशन झेला है, हम आगे उसका नींव नहीं रख सकते,
तो सेक्युलर हम कहते हैं,
तो इसलिए धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। और आज फिर से वो अपोजिशन के नाम पर, इस बिल अमेंडमेंट बिल को अपोज करने के नाम पर फिर से वो दो बिंदु आए हैं। मुझे लगता है ये संवैधानिक प्रावधानों की पूरी तरह से विपरीत है। इसके मतलब विपक्ष इसकी इम्प्लीमेंटेशन टाइमिंग या प्रोसीजरल एस्पेक्ट इस पर और ज्यादा अच्छी तैयारी के साथ उतर जरूर सकता था, लेकिन मुझे लगता है ये चाहे वो उत्तर दक्षिण वाला भेद हो, चाहे ये धर्म के आधार पर हो, इस पर करना ये किसी भी राजनीतिक इसके लिए ठीक नहीं है।
हमारे साथ आकाशवाणी संवाददाता भूपेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, जो इस पूरे संसद में चल रही कार्यवाही को कवर कर रहे हैं। भूपेंद्र, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा की कार्यवाही जो आज शुरू हुई है, आज कब तक इसे के जारी रखने की संभावना है और कल की क्या स्थिति होगी?
जी, आज जो संसद में जो है तीनों बिलों पे जो चर्चा हो रही है वो लगभग 11 बजे रात तक होनी प्रस्तावित है, और सुबह ये चर्चा जो है वो 12 बजे के करीब शुरू हुई थी, तो अभी तक अगर हम देखें तो 9.5 घंटे से ऊपर तक की चर्चा हो चुकी है, और जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई महत्वपूर्ण सांसदों ने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात सदन में रखी है, और इसके अलावा अमित शाह जी ने भी जो है विपक्ष की कई आशंकाओं को जो है दूर करते हुए अपनी बातों को रखा है। और जहां तक कि कल की बात है तो कल ये चर्चा जारी रहेगी, और शाम को 4 बजे जो है इस चर्चा पर जो है मतदान होगा, और गृह मंत्री अमित शाह जो है इस पूरे चर्चा पे जवाब देंगे, और इसके साथ ही जो है इसके बाद 4 बजे के बाद जो है मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी।
आप सुबह से ही वहां पर हैं और अब तकरीबन इस चर्चा को काफी समय हो गया है, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष की तरफ से?
जी, जो है कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जो भी जो है कि चर्चा जारी है उसमें जो है कि सांसद जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लगभग सभी पार्टी के सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के सदस्य हो, सबने अपनी बातें जो है पुख्ता तरीके से सामने रखी हैं, और काफी क्या कहते हैं उत्साह है सत्ता पक्ष में जो है कि इस इन विधेयकों को पास कराने को लेकर, और तमाम चर्चाओं के क्या कहते हैं आधार पे जो है कि ये कल भी जो है चर्चा जारी रहेगी, और उम्मीद है कि जो है कि ये सरकार जो है कि इस बिल को जो है कि पास कराने में पूरी तरह से कामयाब रहेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र।
और आपसे जानना चाहेंगे कि 33% जब महिलाएं आएंगी एज यू नो पार्लियामेंटेरियंस, उसके लिए आपको लगता है कि उनको सपोर्ट चाहिए होगा सब पार्टीज का, पार्टी मेंबर्स का, और एक माइंडसेट चेंज भी है पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना है महिला पुरुष को?
आई थिंक they are already doing that in you know various walks of life, so they will learn, you know, this is just a procedural aspect. There are many MPs who take time to even understand the basic procedures of the parliament, how to raise a question, how to participate in the discussion.
This is not gender based.
See the key question will be, one, because now the numbers of women in the parliament will be around 270 out of 850. So you will have more vibrant voices that will talk about, because you know the basic change or the basic approach, you know, many a times people say it jokingly, but it has a very you know in-depth sense. You know, two men coming together generally will speak about what is happening in, you know, Iran or, you know, the larger global questions.
Right.
While a woman will talk about what is happening at the family level. Now, ultimately in democracy, you have to handle both. And if you don't have that kind of balance, I'm not undermining the ability of a woman to understand the global issues. The question is, this inherent perspective of a woman in policy parameters and policy making process is somewhere missing when the representation is so obscure, up to 10 to 12%.
Right.
That is the fundamental point. The idea of representation in our constitution is based on this fundamental logic, that every section will bring in the different perspective towards a policy. So a woman, you know, thinking about, say, the issues like Jal Jeevan Mission will be entirely different from the way a man would think, because on a daily basis, she has to face, you know, those issues differently. And that's why in panchayat level also, we see different kind of priorities and different approaches in handling the question. Now, over the period of time, you know, if they can handle agriculture at their home front, they will address the agricultural issues on policy terms also. If they can be entrepreneurs in their personal lives, they can have, in, you know, understand industrial laws and labor laws also in the coming days. If they can handle the space technology, or they can become engineers,
right,
they will have, you know, inputs related to industrial policies and the technological innovations also. Why should we concern about it? You know, I personally believe in democracy, and in India we have seen that multiple times. Even for that matter, men having, you know, lesser educational qualification, have shown that, you know, when it comes to the administration and policy acumen, you know, they have been much better because of their rootedness. You know, because they were connected with the people. And we have seen that multiple examples, especially at the state level, where the chief ministers, you know, having, you know, not very illustrious kind of qualification, have performed exceedingly well when it comes to the policy formulation. And their policies have been much more progressive and future oriented. So thinking about women who can handle, you know, family affairs and balance well between their professional and personal lives, will find any difficulty in handling the political issues. Yes, the initial challenge will be, how do they create space for themselves in the party machinery?
Yes.
Till now, you know, their space was confined to generally Mahila Morchas,
right,
the women's wing of the party. Now, when you have to be the mainstream of the party, there, creating your own constituency, nurturing that constituency, coming out and addressing issues of the people, how they are going to handle that. Now they are doing that.
So it will be a little bit of a challenge given our patriarchal mindset, which is changing very fast, no doubt.
I think it is a process.
Yes.
Instead of challenge, I would look at it as a process. We have seen that process at the panchayat level.
Hmm.
We'll see that at the assembly and the parliamentary level.
Absolutely.
Gee. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और उन्होंने कहा कि सभी महिलाओं के लिए आज से बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता भारत के लिए, और उन्होंने डीएमके की तरफ से जो विरोध किया जा रहा है उस पर भी अपने विचार रखे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
इट्स अ ग्रेट डे फॉर ऑल ऑफ वुमेन ऑफ कंट्री। आई विश दिस विल पास विद थंपिंग मेजोरिटी एंड ऑल द वुमेन डॉटर ऑफ दिस इंडिया कैन ग्रो फास्टर एंड ज्वाइन हैंड विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं पूरे इन राजनीतिक दलों की ओर देख रही हैं कि हमें हमारा हक कब मिलेगा। तो आई विश कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और महिला बिल को पास कर। वुमेन ऑफ इंडिया इज अ फायर, डोंट प्ले विद फायर ऑफ इंडिया।
So very inspirational words. And if we look at, you know, certain examples, like whenever, let's say, board exams results come out, the headlines say girls outshine boys. So girls are really, in terms of talent, wisdom, intelligence, performance, they are probably, you know, at par. So
no, anywhere, Sonuji, please try and understand. When you have given an opportunity and when you are aspirational, you know, many a times when it comes to education, when it comes to the opportunities, for boys, it is a given thing. You know, I always see, you know, Haryana is the classic example. Just 10 years, 12 years back, when this, Beti Bachao Abhiyan started, Haryana had a very obscure, sex ratio. Now, not just that, the sex ratio had changed. We are seeing, you know, on toll plazas, even in the nights, women are sitting there. When it comes to the constables, you know, the recruitment in police machinery, women are, you know, actually on the forefront. Merit list. Forget about just 10th and 12th. All merit list, including if you see Delhi University's, you know, the hostel admissions, because hostels are given on the basis of merit, you will find women at the top, because they are in the aspirational mode and they want to prove themselves, and that's why they take a bit. Their focus is clear why they want to study and what do they want to achieve out of this, and that naturally gives the results. The question is, when it comes to translating that meritorious academic performance, whether that is being translated into the professional success or not, or it gets blocked somewhere due to the glass ceiling, that is the real question. And there we are seeing many private fields where women are breaking the glass ceiling. And our president is a classic example of this, where she's coming from the tribal community, a widow, and then coming up to that level, overcoming all the obstacles. I think those are the role models, and girl child are taking them very seriously.
प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम में ज्यादा समय नहीं है, अंत में एक सवाल आपसे जरूर करना चाहेंगी। इन तीन कानूनों को बनने के बाद भारत जैसे देश में जो पुरुष प्रधान समाज है, आप जेंडर न्यूट्रल पॉलिटिक्स की उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए, पहली बात तो मैं मानता नहीं कि हम पुरुष प्रधान समाज है। भारत में महिलाओं के संबंध में जितने भी सुधार आज तक हुए हैं, भारत अकेला ऐसा देश है कि जो पुरुषों ने लाए हैं। बाकी जगह पे महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए लड़ना पड़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि बीच के कालखंड में हमने महिलाओं की क्षमताओं को सीमाओं में बांध दिया था। आज वो फिर से राष्ट्र जीवन के प्रवाह में अपना स्थान खोज रही है, और ऐसे में उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करना हर पुरुष का काम है। फेमिनिज्म ये महिलाओं का डोमेन नहीं है, संस्कार ये महिलाओं का डोमेन नहीं है, पुरुष की समस्या है। असुरक्षा महिला को महिला से नहीं लगती है, पुरुष से लगती है, रात को निकलती है, तो संस्कार तो पुरुष को होने चाहिए। तो यही मानसिकता जो बदलने, तो पुरुष की, उसके पास तो क्षमता है। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हेन ही वाज आस्क्ड कि भाई विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मैं विधवा भी नहीं हूं, विवाहित भी नहीं हूं, आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? उस महिला को पूछो कि उसको फिर से विवाह करना है या नहीं, एंड लेट हर गिव अ राइट। माई जॉब इज ओनली टू एजुकेट हर एंड एम्पावर हर। नाउ दिस हैज गिवन द अपॉर्चुनिटी to give a space in the policy making process.
Giving them respect, giving them empowerment.
With dignity, yes. We are giving them space, their due space, as Prime Minister said to
Thank them. You so much, Prafulji and Anandji. And now we'd like to wind up this program because we are running out of time. Thank you so much.
अभी आप सुन रहे थे नारी शक्ति वंदन पर विशेष कार्यक्रम।